नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भागवतम का पंचम स्कंद है, अध्याय पहला और श्लोक संख्या 3। ये महाराज प्रियव्रत का चरित्र बहुत उत्कृष्ट है और सभी गृहस्थों के लिए उदाहरण रूप है। परीक्षित महाराज का प्रश्न, जब महाराज प्रियव्रत के बारे में इनकी महत्ता, इनकी भक्ति, इनका सारी प्रजा के प्रति अपना भाव, ये सब पहले तो सुना था, लेकिन अभी परीक्षित महाराज को विस्मय हो रहा है कि नारद मुनि के संपर्क में आने से इन्होंने प्रियव्रत मनु महाराज का बेटा है और दूसरा उत्तानपाद है। तो प्रियव्रत की बातें हैं तो उसमें नारद मुनि के संपर्क में आने से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अछूता रहा हो, सबकी चौपट कर देते हैं नारद मुनि। तब प्रियव्रत का सारा ब्रह्मचर्य आश्रम इतना उदार था, आदर्श था, तो ये तो मुक्ति का पथ है। पहले से ही जो जीवन मुक्त है, जिनका चरित्र ऐसे व्यक्ति एक गृहस्थाश्रम में क्यों हम आनंद मानते, ये तो विरोधाभास लगता है। जो जीवन मुक्त है वो गृहस्थाश्रम में क्यों पड़ता है, बंधन में क्यों पड़ता है, कर्म के विपाक तो को क्यों झेलना चाहता है, ये ठीक नहीं। लेकिन दूसरी बात यह है कि परीक्षित महाराज स्वयं भक्त होते भी ये जानते हैं कि भक्तों की स्थिति अचल होती है। वैसे तो आत्मा भक्त होती है तो शरीर तो प्रकृति की देन है, तो प्रकृति के 3 गुणों से विचलित रहता ही है और उसे ऐसा व्यवहार करना ही पड़ता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण श्रीमद् भागवत में आएंगे कि जो भक्त को जो अनुरूप शरीर होना चाहिए भक्ति के लिए, ऐसा कोई नियम नहीं। राक्षस कुल में भी भक्त होते हैं। जब चित्रकेतु जैसा भगवान से शिक्षा प्राप्त करके राजा बनने के लिए आया था तो प्रियव्रत की भी ऐसी विशुद्ध भक्त के संपर्क द्वारा उसने अपनी सारी भक्ति को जतन किया है और उद्देश्य को बना रखा है कि भक्ति का उद्देश्य क्या है। तो प्रियव्रत और चित्रकेतु जो बाद में पार्वती के श्राप से वृत्रासुर बना, ये भक्त होते हुए भी अनुरूप शरीर नहीं धारण करते। गृहस्थ का शरीर कर्म विपाक से, कर्म के जंजाल में इतना फंसा रहता है, तो ये विस्मय परीक्षित महाराज के मन में हुआ। वो प्रश्न करते हैं कि इतना सब होते हुए भी हम भक्ति की महत्ता में हमें संदेह रहता है कि ये क्या है, जानते हुए भी ऐसी हालत में फंसता है, यानी कि जान बुझ कर भौतिक प्रकृति के वश में रहना है। तब परीक्षित महाराज चारे ओर से भक्ति की महत्ता तो बताते हैं, प्रश्न में बताते हैं, आज का भी उसका प्रश्न का अनुसंधान ही है। तो है महताम खलु विप्रशे उत्तम श्लोक पादयोः छाया निवृत्त चित्तानां न कुटुंबे स्पृहामतिः। महतां खलु विप्रशे उत्तम श्लोक पादयोः छाया निवृत्त चित्तानां न कुटुंबे स्पृहामतिः। महतां खलु विप्रशे उत्तम श्लोक पादयोः छाया निवृत्त चित्तानां न कुटुंबे स्पृहामति। महतां खलु विप्रशे उत्तम श्लोक पादयोः छाया निवृत्त चित्तानां न कुटुंबे स्पृहामति। भगवान के चरण कमल की छाया, छाया से निवृत्त तृप्त चित्तानाम, जिनकी चेतना न नहीं, कुटुंबे पारिवारिक सदस्यों पर स्पृहामती आसक्त रहित चेतना। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जिन सिद्ध महात्माओं ने भगवान के चरण कमल की शरण ले रखी है, वे उन चरण कमलों की छाया से पूर्णतया तृप्त है। जिनकी चेतना कभी भी कुटुंबी जनों में आसक्त नहीं हो सकती, ये परीक्षित महाराज जानते हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है कि नीताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, ये छाया है जगत जुड़ा है। उन्होंने भगवान नित्यानंद के चरण कमलों की छाया को इतना शीतल तथा सुंदर बताया है कि भौतिक कार्यों की अग्नि से सदैव संतप्त रहने वाले समस्त भौतिकवादी उन चरण कमलों की छाया में आकर पूरी तरह राहत पाते हैं और तृप्त हो जाते हैं। गृहस्थ जीवन तथा आध्यात्मिक जीवन का अंतर वही समझ सकता है जिसने परिवार में रहकर कष्ट भोगे हैं। अतः जो एक बार भगवान के चरण कमलों की शरण में पहुंच जाता है, वह फिर गृहस्थ जीवन के कार्यकलाप के प्रति आकृष्ट नहीं होता, जैसा कि भगवद गीता के दूसरे अध्याय और 59वें श्लोक में कहा है कि परम दृष्टवा निवर्तते, अच्छा स्वाद चखने के पश्चात मनुष्य निम्न कार्यों का त्याग कर देता है। इस प्रकार भगवान के चरण कमलों की शरण में आते ही मनुष्य गृहस्थ जीवन से विरक्त हो जाता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाका चक्षुर्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महतां खलु विप्रशे उत्तम श्लोक पादयोः छाया निवृत्त चित्तानां न कुटुंबे स्पृहामति। महान भक्त के लिए स्वाभाविक रूप से कुटुंब प्रत्ये स्पृहा नहीं होती, चाहे वो गृहस्थाश्रम में भी क्यों ना हो। आदर्श गृहस्थाश्रम में स्पृहा बिना सारी जिम्मेदारी निभानी होती है। ये 7वें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि बताते हैं कि आदर्श गृहस्थाश्रम में सर्वप्रथम ये आंतरिक अवस्था भक्तों की होनी चाहिए जो स्पृहा विहीन हो, तभी गृहस्थाश्रम सफल होता है। इंद्रिय तृप्ति गृहस्थाश्रम में निष्फलता का दर्शन कराती है। जब निष्फल होते हैं तो हमें स्वाभाविक रूप से हंसी मजाक में लेना आदत बन जाती है। निष्फल होते हैं, आप कभी जाओ रास्ते पर इतनी भीड़ होती है और सामने से मोटर गाड़ी पैं पैं करके आ रही है और अचानक वो खिसक जाता है, देखो मैं कितना स्मार्ट हूं करके वो हंसता है। क्षण में यदि चूक हो जाती तो उसका निकाल तुरंत हो जाता, लेकिन ये आसक्त व्यक्ति जीवन की ये जो इतनी गंभीर स्थिति में भी वो इंद्रिय तृप्ति करता है, तो आसक्त होने के कारण उसने हंसी आती। जबकि अनासक्त भाव से जीने वाला भक्त अपनी सारी जिम्मेदारी निभाता है और भगवान को अनुरक्त रहकर वो मुक्त स्थिति में रहता है। दूसरी ओर देखें तो शरीर त्रिगुणात्मक भाव से हमेशा विचलित रहता है, गुणों की असर भी होती है, लेकिन जो गुणों से परे होता है और भक्ति में स्थिर रहता है, तो चाहे वो किसी भी आश्रम में किसी भी गुणों का प्रभाव उस पर यदि छाता है और गुणों के अनुसार उसके शरीर को नाचना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, परवशता से जीना पड़ता है, फिर भी वो परवशता अनुभव नहीं करता, आसानी से ये सारी जिंदगी की जो क्रियाएं हैं वो गुणों के अनुसार वहन तो करता है, लेकिन आत्मा भक्त रहती है, आत्मा भक्त रहती है, शरीर भक्ति का माध्यम बनता है, स्वयं भक्त नहीं है। शरीर त्रिगुणात्मक भाव से जुड़ा होता है, आत्मा त्रिगुणात्मक भाव से बद्ध अवस्था में लाचार बन जाती है और बद्ध अवस्था में फिर भी वो इंद्रिय तृप्ति ही एकमात्र उसका जो गुणों का प्रभाव द्वारा प्राप्त हुआ है उसमें ही वो रत रहता है, चाहे वो किसी आपत्तकाल की स्थिति में हो फिर भी हंसना चाहता है। कहते हैं कि मैं बेवकूफ हूं फिर भी देखो सफल हूं, ऐसी महत्ता अपनी बनाए बैठते हैं वो। ये भौतिक दुनिया में एक दूसरे की यानी कि अज्ञानमय स्थिति में बराबरी करते हैं, उसकी कंपटीशन करते हैं। सारा राष्ट्र इसी तरह झूठी उपाधियों या झूठे स्तर पर चलता है, जबकि ये राजर्षि होते हैं ऋषि जैसे, उन लोगों का यह लक्ष्य नहीं होता, क्योंकि स्वयं उदाहरण बनकर इंद्रिय तृप्ति में रहकर भी जो जीवन का उद्देश्य जो है कभी भूल नहीं पाते हैं, भगवान के चरण कमल की छाया नहीं छोड़ते, वो आत्मा से इतने प्रबल रूप से जुड़े रहते हैं। कि चाहे भी कोई भी विपत स्थिति हो, विपरीत स्थिति हो या उसके अनुकूल यानी कि भक्ति के अनुकूल कोई भी अवस्था नहीं मिलती, फिर भी भक्ति में बाहरी वातावरण की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि भक्ति तो आंतरिक वातावरण पर ही बनी रहती, यानी कि आंतरिक वातावरण को शुद्ध करना चाहिए। बाहर कितना भी प्रदूषण क्यों, लेकिन चेतना का प्रदूषण भक्ति में काम नहीं करेगा। इसलिए ये परीक्षित महाराज को थोड़ा विस्मय पैदा कर रहा है। विस्मय पैदा करने वाले ये थोड़ा लिखते हैं कि जिन्होंने भगवान के चरण कमल पकड़ रखे हैं तो गृहस्थ होकर भी अनासक्त भाव से जीते हैं, जानते हैं, फिर भी विस्मय हम लोगों के लिए होता कि ऐसा कैसा, क्या कारण है। परीक्षित महाराज का जो विस्मय है, उनका जो संदेह है, वो हमारी स्थिति बताता है। जो भोगासक्त जीवन जी रहा है, भगवान के चरण कमल को भूल जाता है, भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अप्रत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधान भी दिए थे, जो भोग और ऐश्वर्य में प्रसक्त है, तो किसी भी ढंग से उसको आत्मा के व्यवसाय यानी कि भगवान की शरणागत होने की कोई मति होती किसी भी ढंग से आती ही नहीं। तो जो आंतरिक शुद्धि की बात भक्तों में होनी चाहिए, अंतर्मुखी ही बनकर कर सकते हैं। बहिर्मुखी भक्तों की ज्यादा ऐसी उदाहरण के रूप में आवश्यकता नहीं है, न तो लेनी चाहिए। बहिर्मुखी भक्त अपनी ये बहिर्मुखी प्रवृत्ति जो है, जो भोगेश्वरी प्रसक्त है, फिर भी किसी संयोगवश उसे भक्ति का बीज मिला है, ये है, पर फिर भी भौतिक गुणों के प्रभाव में वो आसक्त बनकर भौतिक गुणों की कठपुतली बनकर नाचता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति वो अपने अनर्थों को बनाए रखना चाहता है, क्योंकि आसक्त अनर्थों को बनाए रखे भक्ति का स्वांग बनाते। अपने पूर्ववर्ती आचार्यों ने काफी निंदा की इन चीजों, कली चेला कौन होता है, ना के तिलक गले वाला वो भी रखता है, लेकिन उसके मनोभाव क्या है, आंतरिक परिस्थिति क्या है, वो देखने का प्रयत्न करना चाहिए। आंतरिक परिस्थिति लाने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु ने तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। ये कीर्तनीय सदाहरि की स्थिति के लिए आंतरिक व्यवस्था की आवश्यकता है। बहिर्मुखी अब जीवन भक्तों का नहीं, भक्तों को ये लाभ है जो उसका यथोचित उपयोग करके अपना जीवन विकास करें। तो ये स्थिति जो नवसिखिया भक्त हैं या मध्यम अधिकारी हैं, जो संसार में हैं और परेशानियों से उलझे रहते हैं, तो परेशानियों भी निर्मूल करने के लिए ही तो ये उपाय है कि भाई आंतरिक कितने बने हैं, भौतिक आसक्तियों से कितने छूटे हैं। भौतिक कर्म से छूटने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन फल की आसक्ति उसके देहाशक्ति में ज्यादा जुड़ती है। इसलिए अंतर्मुखी भक्त चैतन्य महाप्रभु के अनुसार वो अपना जीवन बिताता है। ये जानते हुए परीक्षित महाराज जब कहते हैं तो इसके पीछे ये हमारे बोध के लिए ही तो ऐसा पूछते हैं, नहीं तो विशुद्ध भक्त है। लेकिन संयोग वसात वो भी गुणों के प्रभाव में आ गए थे। जब श्रमिक ऋषि का गले में सांप डाल करके अपमान किया था, लेकिन हमें ये नहीं देखना चाहिए कि देखो ना इतने बड़े बड़े साधु महात्मा होते हैं, विशुद्ध भक्त होते हैं, इन लोगों को भी संसार की ये सारी बातें झेलनी पड़ती हैं। ये झेलने के लिए हमारे में तो इतनी शक्ति नहीं है, हम तो उसके शिकार बन जाते हैं, जबकि ये लोग संसार से तर जाते हैं। तो संसार से तरने के लिए ही तो भक्ति दी है, तो इसमें विस्मय नहीं करना चाहिए। विस्मय होता है क्यों? आसक्ति है ना, इसलिए होता है। परीक्षित महाराज को कोई आसक्ति नहीं, फिर भी जब प्रश्न पूछते हैं तो वो किसके हित में है वो देखना चाहिए। परीक्षित महाराज को संदेह रहा, ये हम सब लोगों के लिए रहा, क्योंकि श्रीमद् भागवतम तो उद्धार करने के लिए है, डुबोने के लिए नहीं। तो जब ऐसे शुरुआत सुखदेव गोस्वामी से उत्तर पाने के लिए करते हैं तो सुखदेव गोस्वामी क्यों सराहना करते हैं? तू सच बोल रहा है, तू सच बोल रहा है, तू जानता है सच है। ओ, लेकिन ये सच का हम कैसे अपने जीवन में उतारे? इसलिए परीक्षित महाराज जानते हुए भी अपने ऊपरी अधिकारी से पूछते हैं, सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं। उत्तर हमेशा स्वयं भी दे सकते हैं, लेकिन जब विनम्र भाव से हम भगवान के चरण कमल को अछूते रहे बिना जब संसार की सारी बातें हम समाधान के रूप में करने की कोशिश करते हैं तो अवश्य सफल होंगे। समाधान तो चाहिए, समाधान सामान्य लोगों के लिए है जो भक्ति में श्रद्धा रखते हैं लेकिन इतना विकास नहीं कर पाए हैं। फिर भी विकास को उत्तेजन देने के लिए तो यही उपाय बताते हैं। तो ये प्रश्न सही है और उसमें उत्तर भी है, क्योंकि परीक्षित महाराज जानते हैं और सुखदेव गोस्वामी भी कहेंगे कि कहां तो सच बोल रहा है, तो फिर संदेह की बात क्या है? हमारे लोग की आदत है कि हम मान लेते हैं कि क्योंकि ये देखो ना बड़े बोले हैं, ये भी कह रहे हैं, मान लेते हैं। फिर भी हमारे जीवन में ज्यादा परिवर्तन नहीं आता, तो गंभीर बात तो वही है। जब आप संसार में आसक्ति का कारण और बंधन की अवस्था का कारण जानते हैं और उससे छूटने का उपाय भी जानते हैं, फिर भी जिन जिन ने देह धारण किया है वो ये द्विधा परिस्थिति में जाएगा ही जाएगा। माया उसकी इस ढंग से परीक्षा करेगी, उस ढंग से परीक्षा होती ही रहेगी, लेकिन स्थिरता जो अचल स्थिति भगवान भी बात करते हैं भगवत गीता में, अचल स्थिति तो वो अक्षर प्रवृत्ति कहलाती है। अक्षर स्थिति वो भक्तों की हो सकती है, अन्यथा दो ही प्रकार के व्यक्ति जी रहे हैं संसार में, द्वाविभव पुरुषो लोक क्षर चाक्षर एवं क्षर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्चते। तो ये कुटस्थ की स्थिति जो है ये परीक्षित महाराज में है, तो अंतर्मुखी बनकर हम अपनी कुटस्थिति ला सकते हैं। कुट यानी शिखर, पर्वत का शिखर को कुट कहते हैं। हाँ, शिखर अचल होता है और उसकी जो बुनियाद कितनी विस्तारपूर्ण, शिखर तो थोड़ा सा ही है लेकिन बुनियाद ज्यादा है उसकी। हाँ, पहाड़ नीचे से बड़ा होता है या ऊपर से बड़ा होता है? नीचे से। हाँ, तो नीचे यानी कि भौतिक धरातल पर हम रह रहे हैं और तीन गुणों के से प्रभावित होकर हम अपना जीवन बिताते रहते हैं और उसमें से ऊपर उठने की बात ही नहीं। इसलिए तो हमने त्रिगुणों से रहित होने के लिए भक्ति दी है। तो भक्ति का विकास के लिए हमेशा विशुद्ध जीव परीक्षित महाराज जैसे भी सचेत रहते हैं। वही हेतु के लिए नैमिषारण्य के ऋषियों ने ये श्रीमद्भागवत का 1000 साल तक का आयोजन कर रखा। हम तो 7 दिन का आयोजन में ही परेशान हो जाते हैं और उसमें भी भौतिक आसक्ति को छोड़ने के बजाय वहाँ माफियागिरी चालू हो जाती है। इन बड़े बड़े आयोजन हमें, हम एक जो प्रवक्ता हैं उनके पास हम खुद गए थे कि भैया तो अपने इसको उनके कुछ मदद कर सकता है, तो उन्होंने क्या कहा, ये सूरत की बात है, तो उसने कहा कि क्या हम तो आते हैं लेकिन आयोजन ये लोग हीरा घसू लोग करते हैं। हीरा घसू यानी माफिया लोग है, पैसों से जो सारा आयोजन और उसकी गिनती, उसकी महत्ता और ये वो चढ़ावा वो दिखावा ये सब ये लोग, इन लोगों के साथ आपको तालमेल रखना पड़ेगा, जाओ इनके पास। तो हमें कोई आपत्ति नहीं, हम तो अपना चंदा लेकर चले जाएं, बाद में आप दोनों बंटवारे कर लेना। मैंने बड़ा मारो गोली, ये तो काफी प्रभुपाद जी के नियम के विरुद्ध, न तो हम ऐसे ऐसे सप्ताहों का आयोजन के समर्थक हैं, न तो उससे लाभान्वित होना चाहते, पैसों से लाभान्वित भी नहीं। यदि ऐसी घटनाएं बहुत आती हैं लेकिन हम ऐसी स्थिति में अभी चल रहे हैं। अरे क्या क्या नहीं चल रहा है इस कौन में, सन्यासियों को भी ऐसी आपत्ति आती है। और बड़े बड़े जो संचालक हैं, प्रेसिडेंट हैं, जीबीस हैं, इन लोगों से भी ऐसी परेशानी से गुजरना पड़ता है। बड़ा मंदिर है, जब हम न्यूयॉर्क में ज्वाइन किए थे 1978 की बात है, सॉरी 79 की बात है, 13 मंजिली बड़ा मकान, प्रभुपाद जी के बहुत पसंद था। उन्होंने कहा था कि मैं यदि अमेरिका में मर जाऊं तो मेरी समाधि उसकी छत पे लगाना, कि मैं एम्पायर स्टेट जो बिल्डिंग है उसको हमेशा देखता रहूंगा। सचमुच उन्होंने कहा था। लेकिन ये सफेद हाथी जैसा मकान भक्तों को लग रहा, और संचालकों ने ये कैसा निर्णय कर दिया कि इसको बेच दे। प्रभुपाद जी ने मना किया था कि भगवान की संपत्ति को न तो मोर्गेज कर सकते हैं न बेच सकते हैं, पीरियड। फिर भी उन्होंने देखा, अरे एक मंदिर से 5 मंदिर बनेगा, हमें एक मंदिर बना दिया था, लेकिन बेचा सही, बेचा सही। 1.5 साल तक हम रास्ते पर थे, रहने की जगह नहीं थी। इसमें 5 प्रॉपर्टी खरीदने का, एक प्रॉपर्टी न्यू जर्सी में ली, वहां गांव वालों ने मना कर दिया कि यहां ये लोग मंदिर नहीं बना सकते। करीबन 15-16 एकड़ की भूमि है, फिर भी मंदिर नहीं बना सकते। तो रविवार को इकट्ठे होते हैं थोड़े, वो भी ज्यादा यदि लोग इकट्ठे हो जाएं तो पुलिस में फरियाद हो जाती है, लेकिन टिक रहा है थोड़ा सा, लेकिन विकास नहीं कर सकते वो जगह। दूसरा मंदिर न्यूयॉर्क में लिया, वो भी एक छोटा सा मकान लिया, राधा गोविंद का 13 मंजिली मकान एक छोटे से 3 मंजिली मकान में आ गए, और उन्होंने देखा कि सुधार करना है, ये करना है, वो करना है, तो किसी कॉन्ट्रैक्टर को $2,00,000 देकर सा। अरे 1.5 साल तक राधा गोविंद जी टेंट में रहे हैं, टेंट में न दर्शन कर पाते न कुछ नहीं। और जब म्यूनिसिपालिटी ने ऑक्यूपेंसी परमिट सिर्फ 50 आदमियों के लिए दी, तो हम लोग तो 450-500 का तो रखते थे। संडे यानी कि रविवार को जो प्रीति भोज था वो करीबन 800 लोग आते थे, और हम खुद इन लोगों के लिए मसाला डोसा इत्यादि सब कुछ खिलाकर इतनी हम प्रगति थी जो बड़े मकान में थे। तो ये बेच देकर 5 मंद और एक हमें दिया, सिन्हा जी की स्थापना करनी है करके। और वो जगह थी कोई मोटर मैकेनिक की गैराज, और वो भी रेलवे पटरी की नजदीक। जब गाड़ी पसार होती है रेलगाड़ी तो सारा मकान दर्दरता था, और ये ऑयल की कीचड़ दुर्गंध, हम तो कभी गए ही नहीं, फिर भी उन्होंने ऐसी बात की तो हम विरोध करके हम गए और छोटे से अपार्टमेंट में वहाँ मंदिर चालू किया। 1979 की बात है। तो न्यू जर्सी वाला, मैनहट्टन वाला, मैनहट्टन की तो बात मुझे, न्यूयॉर्क की जो बात है, तो वो परमिशन भी नहीं दी, बेचना पड़ा उसको। और बाद में ये स्किमरहॉर्न स्ट्रीट पर जब आज राधा गोविंद जी स्थित, वो कहते हैं कि हमारी हैसियत नहीं कि इतने बड़े सफेद हाथी को पाले। अरे क्या हुआ, उसे बेचने का सोच रहे। अरे क्या है, वो जगह की कीमत बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। जो 4.5 लाख रुपए में, सॉरी डॉलर में ये मकान लिया था, और जो भी प्रॉफिट आया तो सब उसमें डिट्रॉइट के मंदिर में भेज दिया, यहाँ भारतीय सेंटर करके चालू कर दिया। और दूसरी बात यह है कि आज स्थिति कुछ और है। आज वो मकान का सौदा हो रहा है $60 मिलियन का, लेकिन राधा गोविंद जी की $60 मिलियन ही कीमत है क्या? प्रभुपाद जी की इच्छा की कीमत कोई नहीं। यानी कि ये संचालकों को भी ऐसी नौबत आती है कि गुणों का प्रभाव, रजोगुण, पैसे 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 की गिनती में, ये तो हमें तो तीनों गुणों से ऊपर होना है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भूमि धरातल पे ये 3 गुणों का भक्त होते हुए भी उसको सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन सफलता कहाँ है? सफलता था उस बीच में हमारा जीबीसी निवृत्त हो गया, तो दूसरे जीबीसी आए, उन्होंने देखा तो सब जगह ये है, तो उन्होंने कहा कि हम विग्रह सेवा का बोझा नहीं उठा पाते, आप अपना बंद करो। हमें बंद करने का आदेश आ गया, तो हमने सोचा कि भगवान यहां नहीं आना चाहते, नहीं तो अपनी सारी तैयारी है, तो हम सीधे न्यू वृंदावन पहुंच गए, वहां श्रीनाथ जी की स्थापना कर दी। भगवान सेवा अछूत नहीं रहना, सेवा चालू रहनी चाहिए। सेवा में यदि परेशानी आती है तो भक्ति में परेशानी आती है। जो लोग तीन गुणों से प्रभावित होकर सिर्फ फायदे की बात करते हैं, वो भक्ति के विकास को ठुकराते हैं। भक्ति इन चीजों पर निर्भर नहीं है, इसलिए प्रभुपाद जी का आदेश जैसी स्थिति आती है सहन करके भी वैसे आगे प्रगति करनी चाहिए। एक चौथा मंदिर वो लॉन्ग आइलैंड में बना, उसको ऋत्विक वाला हाईजेक कर गए, वो भी हाथ से गए। और पांचवा एक 75 एकड़ के कैंपिंग ग्राउंड, वो जहां ज्यादा ठंडी बर्फ इत्यादि पड़ता है, वो मोंटी से लोग करके 40-45 मील दूर है न्यूयॉर्क सिटी से, वहां रखा। वहां तो रात को भालू भी आते हैं, एबंडन कैंप ग्राउंड था, तो जगन्नाथ सुभद्रा वहां दे, बाल्टीमोर में गोरनीताए गए, एक राधा गोविंद जी को इन्होंने पकड़ रखा, क्योंकि जब इतनी सारी भगवान की उत्कृष्ट सेवा हो रही थी, तब भगवान को भी अपने परिवार से बिछुड़ना पड़े, ऐसी स्थिति क्यों आ? तो अवश्य कहीं ना कहीं देखें तो धर्मस्य ग्लानी भक्तों को भी जब आती है तो सामना कैसे करेंगे, सामना कैसे करेंगे? वो मोंटिसेलो का जो कैंप ग्राउंड था जगन्नाथ मंदिर, वहां इन लोगों को मोर्गेज देने के लिए भक्तों को न्यूयॉर्क सिटी वापस भेजना पड़ता था और कुछ चंदा इकट्ठा करना, तो कैसा मैनेजमेंट है? तो ऐसी परिस्थिति में जब गुजरते हैं तो प्रभुपाद जी का ये प्रांगण है जहां से सारे इस्कोन का विस्तार हुआ है। वे प्रांगण आज भी टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो भक्त कैसे नाचेंगे वहां? भक्ति का आंगन में टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा, वो तो सुरक्षित रूप से रखना ही पड़ेगा। जब इतने साल राधा गोविंद जी की यदि सेवा हुई है, वो कहते हैं कि क्या ये बेकार इलाका है जहां कल्लू लोग शराब पीते हैं और परेशानी करते हैं और गोली चलती है, ऐसे ऐसे जगह, लेकिन ये आज इस जगह का इतना सारा विकास हो गया है, हाँ, जहाँ बड़ी बड़ी होटलें आई हैं, बड़ी बड़ी लोग अपने ऑफिस कर रहे हैं, वहाँ से राधा गोविंद जी को कैसे निकालने की सोच सकते हैं? और कहीं जाओ और ऐसे जहाँ विकास करना है ऐसे क्या बोले डंप ग्राउंड में जगह लेना, ये भक्ति को अनुकूल नहीं। तो हमें ये सारे प्रश्न आते हैं, जानते हुए भक्तों को भी वो लोग कैसे उसे इसमें अक्षर भाव से बने रहते हैं, इसमें भक्ति की सिद्धि है। हमारा उद्देश्य क्या है? भक्ति की सिद्धि प्राप्त करना है, विकास करना है। किसके लिए? कि हम अपने लक्ष्य की ओर पहुंचे, जो भगवत प्रेम है। उसके बजाय हम तीन गुणों के प्रभाव से, रजोगुण के प्रभाव से हम ये पॉलिटिक्स करें, ये करें, वो करें, उससे क्या फायदा? तो ऐसी स्थिति में भक्तों की सुरक्षा, भक्ति की सुरक्षा पर आधारित, वो कैसे अपनी भक्ति की सुरक्षा बनाए रखता है वो देखना। परीक्षित महाराज ने तो बना रखी है, इसलिए अंत समय में भी ऐसे प्रश्न कर सकते हैं। हमारा शायद अंत समय ऐसे जल्दी नहीं आता, फिर भी भक्ति की सजागता जब एक बार होती है तो फिर सोना नहीं चाहिए। विपरीत स्थितियों में जो सोता रहता है, यानी कि जिसकी चेतना, अध्यात्म चेतना सोती रहती है, तो क्या फायदा? भक्तों के सामने ये परीक्षा नारायणी ही लेगी, माया देवी ही लेगी। परीक्षा तो भक्तों की ही होती है, अभक्त की नहीं होती है। तो भक्ति और अभक्ति, आसक्ति और अनासक्ति, ये दोनों पक्ष जो हैं उसके लिए हमें हमेशा सजग रहना। ये सजगता यानी कि सावधानी हटी तो दुर्घटना फिर से घटेगी। यानी कि अरे एक मंदिर बेचकर पांच मंदिर किए और पांचे मंदिरों का कोई ठिकाना नहीं। भक्ति का विकास है या ठप पड़ी है? तो संशय पैदा नहीं करना चाहिए। सामान्य लोग संशय पैदा करते हैं, लेकिन ऐसे भक्तों की भक्ति भी बचाए रखने के लिए गुरु भाई इत्यादि सब सजाग रहें और उचित उपाय करें। आप किसी को कोई प्रश्न है? माइक लीजिए। संशय होता है और दूसरों का संशय भी हम ऊपरी अधिकारों से हल कर सके, लेकिन यदि ऊपरी अधिकारों पर ही जो संशय होता है तो ऊपरी अधिकारी के ऊपरी अधिकारी के पास भी जा सकते हैं, यानी कि संशय मिटाना। देखो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के पास क्यों जा रहे हैं, उनको तो संशय नहीं तो ऐसा क्यों बोलते, फिर भी संशय के रूप में दूसरों के हित में। तो आपने वरिष्ठ गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी से बात करते, तो ये संशय भी सही होना चाहिए, क्योंकि उस पर जो शास्त्र का आधार है और परीक्षित महाराज जानकार है, विशुद्ध भक्त है, फिर भी वो दूसरों के हित में ये संशय प्रकट करते हैं। तो संशय यदि चालू रहेगा तो क्या होगा, संशय आत्मा विनश्यति। इसलिए अर्जुन भी संशय करता है, संशय होना कोई अप्राकृत यानी प्राकृत नहीं है, अप्राकृत भक्ति होती है, भगवान के साथ अप्राकृत संबंध होता है, दैवी संबंध अप्राकृत, ये तो प्रकृति द्वारा जो पैदा हुआ संबंध जो है वो वास्तविक संशय, क्योंकि वो विरोधी है अध्यात्म के गुण, यानी के अप्राकृत गुण और प्रकृति के गुण दोनों से विरोध है। तो आपका संशय यदि प्राकृत गुणों का सहारा लेकर, प्राकृत गुणों का सहारा लेकर कोई ऐसे व्यवहार जो हमें प्राकृत लगता है लेकिन प्रकृति के द्वारा पैदा हुआ लगता है, तो आप सिर्फ अपना हित नहीं सबका हित देखेंगे, लेकिन आपका संशय यदि प्राकृत गुणों वाला है और दूसरे का व्यवहार को भी प्राकृत मानकर हम उस पर संशय करते हैं, तब ठीक नहीं, ये किसी के हित में नहीं। लोग ज्यादा प्रश्न ऐसे फेंका फेंक करते हैं, ये प्रश्न फेंका, लेकिन क्या गुण है प्रश्न परीक्षित महाराज का, देखो प्रश्न और जो संशय है वो अप्राकृत गुणों से, क्योंकि वो पूर्ति करते हैं कि ये सीखा है उन्होंने अपने वर्ष भक्ति में सीखा है, तो ये भक्ति को कायम रखना है और इसमें यदि कोई हमें संशय लगता है तो ये प्राकृत लगता है, लेकिन अप्राकृत भक्त को संशय प्राकृत गुणों में लगता है किसी के, तो ये सही बताते हैं, लेकिन व्यक्ति ही जो संशय वाला आदमी है वो प्राकृत गुणों से अपना संशय बताता है, तो उसे क्या मालूम कि सामने वाला भक्त अप्राकृत गुणों में व्यवहार कर रहा है या प्राकृत गुणों में व्यवहार कर रहा है, खुद प्राकृत है तो उसकी दृष्टि भी प्राकृत, यानी कि भौतिक बुद्धि से नापतोल करना बंद करना चाहिए, अध्यात्म बुद्धि से नापतोल करना तो ठीक रहेगा। द्वैते भद्रा अभद्र सकली समान, यही भालो यही मंद सब मनोधर्म। द्वैत यानी कि ये जो भौतिक अवस्था है वो द्वैत की, आत्मा है, आत्मा अपने को ही जानता नहीं, जानता है सिर्फ ये ऊंच नीच, द्वैत यानी कि विरोधाभासी दुनिया को जानता है, यहाँ अच्छा भी है बुरा भी है, और तो द्वैते भद्र अभद्र क्या हितकारी है क्या हितकारी नहीं है, ये दोनों बराबर है जब तक भौतिक बुद्धि द्वैत वाली है। यही भालो यही मंद सब मनोधर्म, भक्तों का तो लक्ष्य नहीं, वो अद्वैत बुद्धि रखता है भगवान, आध्यात्मिक बुद्धि रखता है, क्योंकि भगवान की बुद्धि और आत्मा की बुद्धि समांतर होती है, आध्यात्मिक गुणों से है। तो वहां से हम तुलना करें और विस्मय करें तो ठीक है, काम चलाओ यदि पूछने वाले पर भी तीन गुण सवार हो जाते हैं, या जो जिस पर हम संशय करते हैं इन पर भी तीन गुण सवार हो सकते हैं, क्योंकि भौतिक दुनिया में आया है, चाहे विशुद्ध बुद्धि वाला विशुद्ध भक्ति करने वाला विशुद्ध बुद्धि वाला होता तो वो ऐसी तुलना करने का बंद कर देगा, जो आया वो सहन करेगा, ये उपाय है। नहीं तो फरियादी हैं और फरियाद हैं और दोनों भौतिक स्तर की ही हैं तो फायदा क्या, फायदा क्या। तो ये सारी रचना अपने जीवन में या भक्ति में प्रगति करते करते जब हमें ऐसे संशय आते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी रूपरेखा चैतन्य महाप्रभु के आदेश से भक्ति रत्नाकर के रचयिता कौन, भक्ति रत्नाकर के रचयिता भक्ति रत्नाकर किसने लिखा है, साधु लोग वो अपना प्रमाणिक शास्त्र है उसमें व्यवस्था दी है, और जीबीसी को भी हम अपनाना पड़ता है ये व्यवस्था, क्योंकि इसमें भक्ति बची रहनी चाहिए, भक्ति का क्षय नहीं होता, तो ऐसी स्थिति भक्ति बनाए रखना होता है, ये भी जिम्मेदारी का काम, इसलिए गृहस्थ को भी भक्ति की जिम्मेदारी है सर्वप्रथम, और अपनी जो बाकी की फर्जे हैं वो अनासक्त भाव से निभानी चाहिए, इसमें ही गृहस्थाश्रम की सिद्धि बताइए। और कोई प्रश्न, जल्दी करो भूख लगी है।
आप ऐसा घटना के बाद बताए यहाँ पे कि बहुत बड़ी घटना है कि प्रभुपाद जी महाराज जी का आदेश था कि नहीं करना चाहिए और यहाँ हमारा समाधि होना चाहिए, उसके बाद यही मतलब
कोई संदर्भ दो और बाद में बात कर सकते हैं ऐसी जो चर्चा करनी है तो दोनों साइड की आवश्यकता होती है, एक पक्षी चर्चा नहीं हो सकती। जय जगत गोस्वामी प्रभुपाद।